रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समक्ष नवनियुक्त तीन राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। परिणाम आने के हिसाब से काम करने का नवनियुक्त राज्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री का निर्देश। सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री दीर्घ बहादुर सोडारी ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा का परिणाम किया सार्वजनिक। नियमित वाले महज 52.91% हुए उत्तीर्ण। और फिलीपींस की राजधानी मनीला के चाइना टाउन स्थित एक भवन में आग लगने से 11 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को आपसी समन्वय कर परिणाम आने के हिसाब से काम करने का निर्देश किया। आज प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में नवनियुक्त तीन राज्य मंत्रियों को शपथ के बाद बधाई और शुभकामना देते हुए प्रधानमंत्री ओली ने ऐसा निर्देश किया। इस बात का जिक्र करते हुए कि राज्य मंत्रियों का मुख्य काम संबंधित मंत्रियों को सहयोग देना है, प्रधानमंत्री ने राज्य मंत्रियों को रचनात्मक तरीके से अपने कार्यक्षेत्र का सदुपयोग करने का सुझाव दिया। बता दें कि आज ही राष्ट्रपति रामचंद्र पोर्डर ने प्रधानमंत्री की सिफारिश पर उन्हें राज्य मंत्री पदों पर नियुक्त किया था। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने आज 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम सार्वजनिक किया है। बीते वैशाख 14 गति से संचालित परीक्षा में 5,542 विद्यालयों के नियमित करीब 4,00,000 परीक्षार्थी सहभागी थे। बता दें कि नियमित वाले महज 52.91% विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हुए। सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री दीर्घ बहादुर सोडारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज प्रदेश सभा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सोडारी ने इस्तीफे का ऐलान किया। बता दें कि विश्वास मत प्राप्त कर सकने की स्थिति न दिखने के बाद मुख्यमंत्री सोडारी ने इस्तीफा देने का फैसला लिया। उनके इस्तीफा देने के साथ ही अब नई सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। 53 सदस्यीय सुदूर पश्चिम प्रदेश सभा में सरकार गठन के लिए कम से कम 27 प्रदेश सभा सदस्यों का समर्थन जरूरी है। बता दें कि वहां कांग्रेस के 18 और एमाले के 11 प्रदेश सभा सदस्य हैं। वहीं माओवादी केंद्र के 11, नागरिक उन्मुक्ति के 7, एकीकृत समाजवादी के 4, रापरपा के 1 और 1 स्वतंत्र सदस्य हैं। लुम्बिनी प्रदेश सरकार में सहभागी 8 मंत्रियों को विभागीय जिम्मेदारी दी गई है। 10 दिन पहले बिना विभागीय मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए मंत्रियों को आज विभाग निर्धारित किए गए हैं। लुम्बिनी प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पद पर एमाले सहित इमाले संसदीय दल के उपनेता चित्रायण आचार्य समेत इमाले से 5 और कांग्रेस के 4 मंत्रियों ने 7-9 गते को शपथ ली थी। मुख्यमंत्री चित्रायण आचार्य ने आज उनका कार्य विभाजन किया। उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पोडेल ने कहा कि निर्माणाधीन बड़ी परियोजनाओं में बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की अर्थ समिति की आज सिंह दरबार में हुई बैठक में अर्थमंत्री पोडेल ने कहा कि निर्माणाधीन राष्ट्रीय गौरव वाली परियोजनाओं और रणनीतिक महत्व वाली अन्य बड़ी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार बजट उपलब्ध कराया जाएगा। देश की पिछली आर्थिक स्थिति पर विमर्श के लिए हुई बैठक में उप प्रधानमंत्री पोडेल ने यह भी कहा कि लघु वित्त और सहकारी क्षेत्र में दिख रही समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी नियमन की नीति बनाने और देश की अर्थव्यवस्था को टिकाऊ बनाने की सरकार पहल कर रही है। स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों की संस्था नेपाल इप्पान ने ऊर्जा क्षेत्र को समृद्धि के आधार के रूप में लेते हुए निजी क्षेत्र के मुद्दों को कानून और नीति में समाविष्ट करने का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मांग की। आज प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में इप्पान के अध्यक्ष गणेश कार्की के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री ओली से मुलाकात कर संसद में विचाराधीन विद्युत विधेयक 2080 को निजी क्षेत्रों के मुद्दों को समेटते हुए पारित कराने की मांग की। इसी तरह पाइपलाइन में रहे 13,000 मेगावाट क्षमता वाली बिजली की परियोजनाओं का व्यापार समझौता जल्द खुलवाने की मांग भी इप्पान ने की। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी ने जिम्मेदार होकर काम करने का माथहत के कर्मचारियों को निर्देश किया है। आज मंत्रालय अंतर्गत की सभी महाशाखाओं विभागों और परियोजना कार्यालय के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक में मंत्री भंडारी ने 6 महीने के भीतर सकारात्मक नतीजा आने के हिसाब से काम करने का निर्देश किया। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G थियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को फोर्जी
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को फोर्जी
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को फोर्जी आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को फोर्जी
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रतिनिधि सभा की रविवार के लिए निर्धारित बैठक को सोमवार के लिए टाल दिया गया है। इसे श्रावण 20 गति रविवार दोपहर 1 बजे के लिए तय बैठक को श्रावण 21 गति सोमवार दोपहर 1 बजे के लिए टाल दिया गया है। ये जानकारी संघीय संसद सचिवालय के महासचिव पद्म प्रसाद पांडे ने दी। सरकार ने मच्छिन्द्रनाथ का फोटो दिखाने वाले दिन इसी श्रावण 20 गति रविवार को घाटी के 3 जिलों में सार्वजनिक छुट्टी देने का ऐलान किया है। बता दें कि श्रावण 20 गते काठमांडू ललितपुर और भक्तपुर में सार्वजनिक छुट्टी देने का निर्णय किया गया है। ये जानकारी गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराय द्वारा जारी सूचना में उल्लेखित है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय की सचिव राधिका अर्याल ने कहा कि रेडियो नेपाल सरकार और जनता को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसकी भूमिका हमेशा अहम रही है। रेडियो नेपाल के नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए आयोजित अभिमुखीकरण तालीम के समापन के अवसर पर आज सहभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए संचार सचिव अर्याल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता, अखंडता और समावेशिता को मजबूत करने के हिसाब से रेडियो नेपाल काम करता आया है। कार्यक्रम में रेडियो नेपाल के निमित्त कार्यकारी निदेशक खगेन्द्र खत्री ने कहा कि नए सामूहिक अभ्यास के माध्यम से रेडियो नेपाल को आगे बढ़ाने के लिए नए कर्मचारियों का उत्साह जरूरी है। रेडियो नेपाल के नायब कार्यकारी निदेशक कृष्णचंद्र पौडेल ने कहा कि रेडियो नेपाल अभी भी सार्वजनिक प्रसारण सेवा के रूप में ही काम कर रहा है। प्यूठान में एक ही परिवार के 3 लोगों में हैजा संक्रमण की पुष्टि हुई है। गौमुखी गांवपालिका वार्ड नंबर 5 के एक ही परिवार के 3 लोगों में हैजा की पुष्टि हुई है। ये जानकारी जिला अस्पताल ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फिलीपींस की राजधानी मनीला के चाइनाटाउन जिले में आज एक छोटी सी इमारत के एक हिस्से में आग लग गई, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। अग्निशमक दल ने आग पर काबू पाने के लिए लगभग 14 फायर ट्रकों के साथ 2 घंटे से अधिक समय तक संघर्ष किया। आग एक पुरानी 5 मंजिला इमारत में लगी, जो दुनिया के सबसे पुराने चाइनाटाउन में से एक में स्थित है। यह क्षेत्र राजधानी के नदी किनारे के घनी आबादी वाले हिस्से में आता है। अग्नि जांचकर्ता रोड्रिक एंड्रेंस ने बताया कि आग भूतल पर एक रेस्तरां में लगी थी और मृतकों में कई कर्मचारी भी शामिल हैं। अधिकांश मृतक दूसरी और तीसरी मंजिल पर पाए गए हैं। फिलहाल किसी अन्य व्यक्ति के लापता होने की सूचना नहीं है। भारतीय राज्य केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 196 हो गई है। वहीं 200 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। वायनाड में सोमवार और मंगलवार के दरमियानी रात हुए भूस्खलन से इलाके में भारी नुकसान हुआ है। अभी तक मरने वालों की संख्या 196 हो गई है। भूस्खलन में मरने वालों में 87 पुरुष, 81 महिलाएं और 28 बच्चे शामिल हैं। सीएचसी मिप्पडी में सबसे ज्यादा 134 शवों को रखा गया है, जिसमें 54 पुरुष, 59 महिला और 21 बच्चे शामिल हैं। 89 घायलों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 173 लोगों को अस्पताल से घर भेजा जा चुका है। वायनाड में 92 राहत शिविरों की स्थापना की गई है, जिसमें 9,428 लोगों को रखा गया है। चूरामाला में 9 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जिसमें 1,571 लोगों को रखा गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समक्ष नवनियुक्त 3 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। परिणाम आने के हिसाब से काम करने का नवनियुक्त राज्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री का निर्देश। सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री दीर्घ बहादुर सोडारी ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा का परिणाम किया सार्वजनिक। नियमित वाले महज 52.1 9.1% हुए उत्तीर्ण। और फिलीपींस की राजधानी मनीला के चाइना टाउन स्थित एक भवन में आग लगने से 11 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।